कुंज में जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ यशोदानन्दन जयो व्रज जन रंजन जयो यशोदानन्दन जयो व्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचरी जयो कुंज बिहारी जयो कुंज बिहारी यमुना तीरा बनचारी जयो कुंज बिहारी यशोदानन्दन जयो ब्रज जन रंजन जयो ब्रज जन रंजन यशोदानंदन जयो ब्रज जन रंजन हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. संकीर्तन यज्ञ की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवराज आचार्य स्तोत्र जीवन विशेषी भक्ति विद्वान स्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। ऑल ग्लोरीज टू समबडी ओटिस, ऑल ग्लोरीज टू समबडी ओटिस, ऑल ग्लोरीज टू समबडी ओटिस, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Hare Krishna. So today we are reading from Bhagavad Gita, chapter 18, text 64. Sarva guhyatamam bhuya, shunu me paramam vacha, ishtosi इष्टोसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच, इष्टोसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच, इष्टोसि मे दृढम् इति वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूय सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच, इष्टोसि मे दृढम् इति वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच, इष्टोसि मे दृढम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। माता जी सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढम् इति ततो वक्ष्यामि चेहितम्। वर्ड टू वर्ड शब्दानुवाद। सर्वगुह्यतमं, सबों में अत्यंत गुह्य, भूय पुनः, शृणु सुनो, मैं मुझसे, परमम परम वच आदेश, इष्टोसि तुम प्रिय हो, मैं मेरे, मुझको दृढ़म अत्यंत, इति इस प्रकार, ततः अतएव, वक्ष्यामि कह रहा हूँ, ते तुम्हारे हितम लाभ के लिए। इसका ट्रांसलेशन अनुवाद। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, ओके प्लीज, चूंकि तुम मेरे अत्यंत मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। तात्पर्य प्रभुपाद इस प्रकार से लिखते हैं, अर्जुन को गुह्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान परमात्मा ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुह्यतमम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। नवे अध्याय में उन्होंने कहा था, मन मना सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भगवद्गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। यह सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता, लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय हैं, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है। और सारे वैदिक साहित्यों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा वनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमोम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंचा कल्पतरूभेश कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय का 64वां श्लोक। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचा, इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद इस श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं इसके शब्द अनुवाद में, इसके अनुवाद में, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो कि सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। इसमें आपका ये भला है जो मैं बोलने वाला हूँ। कृष्ण ऐसा कह रहे हैं अर्जुन को, क्यों कह रहे हैं, अभी ये ऐसा क्या ज्ञान कह रहे हैं, अभी आगे आगे के दो श्लोकों में बताएंगे वो। लेकिन इसमें जो एक एक शब्द को अगर ध्यान से अगर हम सुने, अभी मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा गुह्य ज्ञान, सीक्रेट नॉलेज, सबसे ज़्यादा, इससे सीक्रेट कुछ है नहीं। अगर काफ़ी घरों में चेस्ट रहते हैं जहाँ पे केस रहते हैं, जहाँ पे लोग अपनी संपत्ति को लॉक करके रखते हैं, चेस्ट है, ट्रेजर चेस्ट, तो अगर सभी ट्रेजर चेस्ट में से अगर उसके अंदर भी कभी कभी रहता है, उसके अंदर भी चेस्ट के अंदर चेस्ट रहती है, तो इस तरह से अगर सीक्रेट्स में से सभी सीक्रेट गुहिये में से गुहिये, और जो फाइनल गुहिये निकलेगा वहां से मैं निकाल के अभी बता रहा हूँ आपको ज्ञान। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं, क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप मेरे प्रिय मित्र हो। लेकिन अगर आप इसमें संस्कृत का श्लोक देखेंगे तो वर्ड यूज किया गया है इष्टोसी। यूजुअली ज्यादातर इष्ट वर्ड कहा जाता है कि आपके इष्ट देवता कौन है, हर एक कहते हैं आपका इष्ट कौन है, आपका इष्ट, इष्ट मीन्स बहुत ही प्रिय। सो इधर कृष्ण ये शब्द यूज कर रहे हैं अर्जुन के लिए। सो भगवान चौथे अध्याय में भी कहते हैं ये यथा मम प्रपद्यन्ते, रेसिप्रोकल आदान प्रदान रहता है, जिस प्रकार से भक्त भगवान के लिए अनुभूति करते हैं या फील करते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों के लिए उस प्रकार से फील करते हैं। इसी प्रकार से चौथे अध्याय और पीछे भगवद्गीता में कृष्णा कहते हैं कि, और नौवे अध्याय में भी, कि अनुसूयवे, क्योंकि आप मेरे से द्वेष नहीं करते हैं, और भक्तोसी में सखा चेती चौथे अध्याय में कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और सखा फ्रेंड भी हो, दोस्त भी हो, इसीलिए मैं आपको यह ज्ञान दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपसे कोई द्वेष करता है तो आप अपना सीक्रेट बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे। लोगों को हमेशा डर रहता है कि उसका कोई हार्म ना हो जाए, तो इवन कभी कभी वो अपने क्लोज लोगों को भी, संदिग्ध के लोगों को भी अपना रीजन बताता नहीं है, अपने सीक्रेट्स नहीं बताते। लेकिन जब किसी पे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है, फेथ आ जाता है, तब वो ये ज्ञान देते हैं या अपना सीक्रेट्स बताते हैं। तो कृष्णा भी इधर कहते हैं कि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इष्टो सीमे, तो इसीलिए मैं ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट बता दूंगा। लेकिन यही कृष्णा आप श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कुछ श्लोकों के बाद कहते हैं कि लेकिन ये जो सीक्रेट मैंने बताया है ये कुछ लोगों को नहीं बताने का, जो कि तपस्या नहीं किए सफिशियंट, जो कि मेरे से द्वेष रखते हैं, ये सब वगैरह, उनको नहीं बताने का ये वाला। खैर ये अलग ही चर्चा है, लेकिन जस्ट इसमें जानने का विषय है कि किस प्रकार से कृष्ण भगवान श्री कृष्ण अपना हृदय खोल रहे हैं अर्जुन के सामने। ये भगवद्गीता का अंत आ रहा है अभी, तो कृष्णा भी पूरे भाव में आ चुके हैं अभी अपने भक्त को, जब अपना हृदय खोल के बता रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर कुछ कहता है इस संसार में तो वास्तविक रूप में एक्चुअली अपने अपना मन कहता है, जो उसके मन में चलता वह कहता है, अगर नॉर्मली देखा जाए तो। सो इसी प्रकार से कृष्ण अपना जो वो फील करते हैं वो कह रहे हैं अभी इधर। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि तीन प्रकार के ज्ञान है, जो कि छठे अध्याय के बाद सातवें अध्याय में भी के अंत, छठे अध्याय के अंत में यह कहते हैं कि तीन प्रकार से ज्ञान को विभाजित किया गया है। एक गुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान, ओके, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान एंड गुह्यतमम ज्ञान। सो डिग्री, सो आत्म का ज्ञान को कहा गया है पहला, फर्स्ट स्टेप, गुह्य ज्ञान, सीक्रेट। और जब परमात्मा का ज्ञान जब व्यक्ति को मिलता है तो उसको कहते हैं मोर सीक्रेट, और जब भगवान जब अपना ज्ञान दे देते हैं तो मोर सीक्रेट। तो अभी भगवान अपना पर्सनल नॉलेज दे रहे हैं, तो इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं गुह्य तमम। सो कृष्णा अपने इस ज्ञान को यूजुअली सभी के सामने रिवील नहीं करते, सबके सामने दिखाते नहीं है। अभी भगवद्गीता का ये श्लोक हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी क्या गुह्य तमम ज्ञान है वो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब हम डिस्कशन ख़त्म कर देंगे तो वो चीज़ हमें रिवील हो या वो चीज़ निकल के आए। तो इसके लिए मैं श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद वृत्रासुर की कथा को लूँगा यहाँ से। तो वृत्रासुर की कथा तो बहुत पहले से शुरू हो जाती है, जब विश्व रूप की कथा से शुरू हो जाती है, लेकिन मैं डायरेक्टली सीन को लेके जाऊंगा इंद्र की सभा पे, जहाँ पे बृहस्पति आते हैं और आए दिन रोज दिन की जगह की तरह बृहस्पति आते हैं और सभा में इंद्र बैठे हैं, सभी देवी देवता देवता लोग बैठे हुए हैं। और प्राय ऐसा देखा गया है, और हम अपने जीवन में भी ऐसा देखा गया है कि कोई चीज़ सेम चीज़ बार बार हो बार बार हो तो एक आदत सी हो जाती है। अगर एग्जाम्पल देखना है तो आजकल जो मास मीडिया का ट्रेंड चला है, कोई भी वीडियो वगैरह बनाता है कोई, तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि फ्रेम बदलो, फ्रेम कुछ ना कुछ नया करते रहो, नया सेम चीज़ को बोलते रहो, लोग पक जाएंगे। सेम डायलॉग में बार बार मारता रहूँगा, सेम जोक मारता रहूँगा तो लोग बोलेंगे कुछ नया सुनाओ, हरे कृष्णा बोलता रहूँगा, क्या हरे कृष्णा और कुछ भी बोला, और कुछ है नहीं करने को, क्या सेवा करो। तो नॉर्मल ये प्रवृत्ति है मनुष्य की, रजोगुण इतना बढ़ चुका है कि सेम चीज दोहराने से क्या होता है, व्यक्ति आदत हो जाती, बोर हो जाता है कुछ नया। तो उसी प्रकार से जब बृहस्पति रोज दिन की दिनचर्या की तरह आते हैं इंद्र की सभा में, तो इंद्र थोड़े कैजुअल हो जाते हैं और उन्हें टेंशन नहीं देते, उन्हें ध्यान नहीं देते। तो ये देख के बृहस्पति जी समझ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं, और इंद्र उसी समय ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है उन्हें कि कुछ तो, आप ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है, अब ये ऐसा हो गया है, अब कुछ तो आने वाला है, कुछ तो रिएक्शन आने वाला है उसका। तो वहां से कथा शुरू होती है, फिर वो बृहस्पति चले जाते हैं और ये देख के दानव लोग अटैक कर देते हैं, है ना, उनको भी इंफॉर्मेशन रहता है, उनके भी गुप्तचर रहते हैं, ऐसा नहीं इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड पहले नहीं था, अभी भी है, अभी नहीं है मतलब पहले भी था। तो उन्हें लग जाता पता है, और अटैक कर देते हैं, और जब वो अटैक कर देते हैं तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप जाइए विश्व रूप, विश्व रूप है एक आत्म साक्षात्कार ब्राह्मण है, वो आत्मसंतुष्ट व्यक्ति हैं, उन्हें आप अपना गुरु मान सकते हैं, उन्हें 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 रिक्वेस्ट करिए और वो आपके गुरु बन जाएंगे, तो वो आपको आपकी रक्षा करेंगे। तो ये सुन के सभी देवता लोग किधर जाते हैं, त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप के पास, और विश्व रूप के तीन सर होते हैं। तो सबसे पहले जब देवता लोग उनके पास जाते हैं तो क्योंकि उम्र में वो छोटे होते हैं विश्व रूप, तो विश्व रूप कहते हैं कि जब वो प्रपोजल देते हैं देवता लोग, तो विश्व रूप कहते हैं कि आप मेरे से उम्र में बड़े हैं और आप देवता लोग हैं, तो मैं आपका ये जो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, जो आप मुझे मौका दिया है, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, और स्वीकार भी कैसे करूँ क्योंकि आप मेरे से बड़े हैं। लेकिन देवता लोग उन्हें मनाते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, शास्त्र में वर्णित है कि जो ज्ञान से बड़ा होता है वही बड़ा होता है, और आप में ज्ञान है, आप ब्राह्मण है, ब्रह्मा जी ने भी कहा है, तो आप कृपा करके हमारे हमारे गुरु बन जाइए, है ना। तो इस प्रकार से बार बार मनाने पे विश्वरूप कहते हैं ठीक है चलिए, तो फिर उनके साथ यज्ञ करते हैं और उन्हें फिर वो देते हैं नारायण कवच। तो एक्चुअली अगर हम देखें सेवा स्कंद जो हरि नाम की बहुत महिमा है, शुरुआती हरि नाम की महिमा से होती है, तो नारायण कवच क्या है, जस्ट हरेक जस्ट मंत्र हैं, अलग अलग मंत्र हैं जिनकी, जो कि भगवान की स्तुति है अलग अलग प्रकार से। वो जब नारायण कवच का ज्ञान इंद्र को देते हैं, तो उस नारायण कवच की मदद से वो जब देवताओं, फिर जब दानवों पे राक्षसों से युद्ध होता है तो उसमें वो जीत जाते हैं, और जब जीत जाते हैं तो उसके बाद जब वापस जब इंद्र को वापस अपना अपना सिंहासन अपनी देव स्वर्ग लोक वापस जब मिल जाता है तो उसके बाद जब जब उनके गुरु तो अभी क्या करें, यज्ञ तो रेगुलर होता ही रहता है तो यज्ञ कर रहे होते हैं तो ओपनली वो आहुति देते हैं देवताओं के लिए, देवताओं की शक्ति को बढ़ने के लिए। लेकिन एक सीक्रेट है इधर कि क्योंकि उनका जो बर्थ है, जो उनका जन्म है, वो दोनों ओर से उनका संबंध दोनों साइड से था, दैत्यों की ओर से भी और देवताओं की ओर से भी। तो क्योंकि उनका संबंध दैत्यों की ओर से भी था तो ये सचेत पहले ही ब्रह्मा जी ने उन्हें किया था, क्योंकि वो न्यूट्रल पार्टी है, वो किसी को ऐसा फेवर नहीं करते क्योंकि ब्रह्मन वाले हैं और दोनों ओर से उनका संबंध है। तो इधर भी अगर आपका बेनिफिट करेंगे तो उनको लगता है कि इनका बेनिफिट होना चाहिए, इनका भी भला होना चाहिए। तो चुपके से वो दैत्यों की भी के लिए भी आहुति उनकी शक्तिवर्धन हो रहा था। तो इंद्र जी को थोड़ी सी भनक लग जाती है इस चीज की, क्योंकि क्या इस तरह कहा जाता है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है ना, कहा जाता है ना कि एक बार जब दूध में जल जाता है, एक बार मैं कॉफी पिया था बहुत पहले, तो जब पहली बार पिया था तो बहुत एडवर्टाइजमेंट सुना था, तो नई नई चीज़ का जब पहली बार व्यक्ति सुनता है तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहता है। सो मेरे दोस्त ने बोला ओके ले ये कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी के ऊपर झाग सी रहती है तो इतना एक्साइटेड होके आई डोंट नो, जिन्होंने कभी पी हो तो उसका एक्सपीरियंस रहा होगा कि चाय और कॉफ़ी में बहुत अंतर रहता है। चाय थोड़ी सी थिक रहती है और विस्कोसिटी उसका थोड़ा ज़्यादा रहता है और कॉफ़ी का इतना नहीं रहता। तो जब व्यक्ति पहली बार पीता है तो मैं जल्दी जल्दी जोश में सिप किया और वो सीधा मुंह में चली गई क्योंकि वो पतली थी और हमारे में हम करते हैं और थूक दिया मैंने, तो उससे मेरा मुंह जल गया। तो इससे उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ, समझ आया कि जब पहली बार जल जाता है तो अगली बार वो ध्यान से पीता है, तो इसलिए कहा जाता है दूध का जला हुआ छाछ को फूक फूक के पीता है, क्योंकि छाछ में वो फॉर्म रहता है कि कहीं मुझ द्वारा जल गया। क्योंकि असुरों ने इतना परेशान किया था देवताओं को, अभी तक की उनकी हिस्ट्री रह चुकी थी, कि वो थोड़ी सी आहुति भी देख के कि अरे उनका शक्ति वर्धन हो रहा है और देवराज जी का दिमाग ही नहीं चला और सीधा तलवार से तीनों सर वन शॉट में खत्म, ब्राह्मण हत्या। और ऐसा नहीं कि देवराज इंद्र को बिल्कुल भी महत्व नहीं पता ब्राह्मणों का और भक्तों का, और हम में से हर एक व्यक्ति क्योंकि हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, प्रीवियस हमारे हमारे ऐसे संस्कार रहे हैं इस प्रकार के हमारे हमने अनुभूतियां हो चुकी हैं पहले, तो उससे क्या है कि हम बहुत सारे एक्शन ऐसे कर देते हैं अपने अपने लाइफस्टाइल में, अपने रोज रोज के दिन में ऐसे ऐसे डीलिंग्स कर देते हैं जिससे कि वृत्रासुर जैसे दानव क्रिएट हो रहे हैं हमारी लाइफ में, इसीलिए हम लोग परेशान होते हैं, हमारे भक्ति में परेशानी होती है। सही बात है, तो अभी वृत्रासुर अभी पैदा नहीं हुए, अभी होने वाले हैं, क्योंकि त्वष्टा ने जब ये सुना, एक हिसाब से अगर इस सीन को देखा जाए किसने बुलाया विश्वरूप को गुरु के लिए, इंद्र एंड पार्टी ना, देवताओं ने, हालांकि उसने मना भी किया और इवन ब्रह्मा ने भी कहा था कि वो न्यूट्रल पार्टी है। तो अभी इस तरह का ये सब पूरा सीन को देख के त्वष्टा को आया क्रोध आ गया, तो बदले की भावना आ गई, तो उन्होंने यज्ञ में आहुति डाली इंद्र के शत्रु के नाम पे। तो अभी जो भी व्यक्ति पैदा हो वो इंद्र का शत्रु निकले और इंद्र का संहार करे, तो ये सोच के उसमें त्वष्टा ने आहुति डाली अपने तपोवल से। तो इस प्रकार से पूरा डिस्क्रिप्शन आता है कि यज्ञ में, तो सो ये भागवतम में यहाँ पे मैं श्लोक से आगे करता हूँ कंटिन्यू। विश्वरूप के वध के पश्चात, जब विश्वरूप का वध हो गया उसके पश्चात जिनके पिता त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए अनुष्ठान किया और अग्नि में ये उच्चारण करके आहुति डाली, हे इंद्र के शत्रु तुम्हारी अभिवृद्धि हो, तुम अविलंब मीन्स विलंब नहीं होना चाहिए, रुकना मतलब बिना जल्दी अपने शत्रु का वध करो। सो इतना इतना इतनी उत्सुकता है उन्हें, है ना, तुष्टा को। और जैसे ही वो आहुति डालते हैं तो एक इस तरह कहा जाता है बहुत प्रकार की अग्नियां हैं, तो उनमें से एक है अनवहार्य नामक यज्ञ अग्नि के दक्षिण कोने से एक भयानक, एक भयावना व्यक्ति प्रकट हुआ। और उसका डिस्क्रिप्शन आता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है। जिस प्रकार से युग का अंत आ रहा होता है तो ब्रह्मांड को विनाश करने वाले जैसा प्रतीत हुआ, उसके जैसा लगा कि जब ब्रह्मांड का अंत ही करने वाला है। जस्ट एक आइडिया इंडिकेटिव बताया जा रहा है कि किस प्रकार का व्यक्ति है। अभी और डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि वो एक्चुअली कैसा था देखने में। तो जैसे ही वो पैदा हुआ उस यज्ञ अग्नि से, उसका जो ग्रोथ रेट इतनी फास्ट था, जिस प्रकार से मान लीजिए कि आप कोई व्यक्ति तीर छोड़े चारों दिशाओं में, जिस हिसाब से तीर की गति कंटिन्यूस बढ़ती जाएगी, उसको कैच करना मुश्किल है, उस तरह से उसका स्पीड, उसका साइज बढ़ रहा था। इस तरह से इंडिकेट किया, डायरेक्शन बताया गया। सो इस तरह चारों दिशाओं में जैसे छोड़े हुए बाण के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा, क्योंकि असुर यूजली दिन प्रतिदिन की स्पीड बहुत फास्ट बढ़ती है। और ये लंबा और काला था मानो कोई जला हुआ पर्वत हो, जैसे कोई आग देखी होगी आपने, मान लो कि वो ऐश होती है, ऐश जो जली हुई राख, उसके जैसा पर्वत हो, तो मतलब इतना काला था। और अक्सर दानवों की जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह से, उनकी दाढ़ी मूछें और जो उनकी आंखें यूजली इस तरह बताया जाता है, जैसे कॉपर का रंग होता है ना तांबे का, उस तरह से उसकी बालों का रंग था, है ना, इतना भयानक। उसके जो आंख थे, आंखों के जिस तरह वर्णन किया गया है, जैसे सूरज होता है ना, सूरज दिन के टाइम कैसा रहता है, एकदम देख नहीं सकता कोई, जो भी देखने का प्रयास करे आंखें ज्यादा देख नहीं सकता एक्चुअली, तो उस तरह से उसकी आंखें थी, दिन के सूर्य के भांति भेदने वाला ऐसे नेत्र थे। और ओवरऑल जो उसका डिस्क्रिप्शन था, जब उसको देखा, उसको कोई देख ले तो ऐसा लगता था कि दुर्जय है, जय मीन्स जीतना, दुर्जय मीन्स उसको जीतना असंभव है। और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अपने प्रज्वलित त्रिशूल से तीनों लोकों को धारण किया हो। और इतना बड़ा साइज था, मीलों में उसका साइज था, एक्चुअली उसका एक पांव जो वो ही मीलों का था, अभी उसका साइज कितना होगा, तो उसका अभी उसका हथियार भी वैसा ही होगा, फिर उतना लंबा होगा। और वो स्पेशल हथियार था त्रिशूल, और सिंपल त्रिशूल नहीं था। और जो त्रिशूल हमेशा जैसे लगता था उसको, उसको भी देखना असंभव सा प्रतीत होता था। अभी आगे जब देवासुर संग्राम आएगा उसमें लगेगा पता कि जब वो अपना त्रिशूल छोड़ते हैं तो उसको, उस त्रिशूल को भी देवता लोग देख नहीं पा रहे हैं, इतना तेज है उस त्रिशूल में, और अग्नि इस तरह जल रही है। और जब इतने त्रिशूल के साथ वो क्या कर रहे थे, उत्सवर में नाच रहे थे और गाने से गा रहे थे, अभी क्या गा रहे थे पता नहीं, लेकिन वो उत्सवर में नाच रहे थे। अब इतना बड़ा विशाल काय शरीर है, कभी कभी हम इधर कीर्तन में जोर जोर से नाचते हैं तो आवाज होती है ठक 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 ठक, और जब इतने बड़े शरीर के साथ कोई नाचेगा, इवन चौपाटी टेम्पल में भी, जब मैं एक बार मान मंदिर में हम गए थे 2009 में नाचने के लिए, बरसाना में गोरांगपुर को लेके गए थे, तो वहां पे कीर्तन हो रहा था, तो गौरांग प्रभु पहले बोल दिया, मुझे पता नहीं स्ट्रक्चर सस्टेन करेगा हमारे कीर्तन को कि नहीं, बोला लेकिन राधा रानी की कृपा, तो ये सोच के शुरुआत की, लेकिन मैं कॉन्शियस हो गया जब वो कीर्तन होने लगा, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर फेलियर देखे थे पहले भी, क्योंकि एरोप्लेन इंडस्ट्री से आया था, मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर फेलियर देखे थे और बहुत सारा एनालिसिस होता, और बहुत सारे वीडियोज भी देखे थे कि किस तरह से उस टाइम मैंने डब्ल्यू टी सी को मैंने डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह स्टडी कर रहा था, तो उस टाइम ये सब, तो मैंने कहा स्ट्रक्चर तो अभी नया लग रहा है, और सभी सभी भक्त लोग जोर जोर से नाच रहे थे, और सही में वाइब्रेट कर रहा था वो पूरा स्ट्रक्चर, और मैं एक्चुअली मैं साइड में कोने में बैठ के सोच रहा था क्या होगा क्या होगा, ये कीर्तन को बंद कर देना चाहिए, क्या मालूम स्ट्रक्चर गिर जाए। तो अभी वृत्रासुर इतना बड़ा साइज है, और जब वो इस तरह से नाच रहे थे पूरा कंपन हो रहा था, कंपन हो रहा था, और क्या कर रहे थे, पुनः पुनः बार बार जमाइयां ले रहे थे, जमाइयां मतलब यौन, इंग्लिश में यौन, तो इस प्रकार से कर रहे थे वो बार बार, तो उनकी जब जो जमाइयां ले रहे थे तो लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा था, प्रतीत सब कुछ प्रतीत है इधर, अभी वो रित्रासुर नहीं बता रहे कि मेरे को क्या हो रहा, लेकिन सभी लोग एज्यूम कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है था कि वो जैसे पूरे आकाश को खा जाएंगे। तो इससे प्रतीत होगा कि उनका साइज कितना बड़ा था, है ना। तो इस प्रकार से उनका पूरा डिस्क्रिप्शन आता है कि वो किस प्रकार से उनका साइज था। तो ये सब जो वो देख रहे थे, ये सब अभी ये सीन जो था पूरी दुनिया देख रही थी, क्योंकि अभी इतना बड़ा सीन हो गया है, विश्व रूप को मार दिया तो त्वष्टा कुछ ना कुछ करेंगे। और जब विश्व रूप सॉरी वृत्रासुर ने ऐसा ऐसा जब उनका उनके बारे में वर्णन आ रहा है, तो ऐसा कंपन हो रहा है, तो पूरे ब्रह्मांड में लग गया पता कि कोई तो ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा व्यक्ति आया है जो कुछ तो भयानक है। तो त्वष्टा के इंटेंशन को समझ गए थे इंद्रा, और ये दानव पैदा हुआ है उनको मारने के लिए। तो इंद्र पूरी आर्मी के साथ, और उनकी आर्मी बहुत सारे अलग अलग वर्णन आता है कि रिभु, रुद्रास, मारुत और भी बहुत सारे देवता लोग हैं जो कि असंख्य हैं, जिनकी काउंट करना बहुत मुश्किल है। वो सभी लोग मिलके अटैक करते हैं इन अकेले वृत्रासुर पे। इससे यार डिस्क्रिप्शन नहीं कि उनके साथ बाकी दानव भी हैं कि नहीं, लेकिन वो अकेले हैं अभी। एटलीस्ट वो अटैक करते हैं इंद्र, इंद्र आदि देवता सैनिकों सहित असुर पर टूट पड़े। वे अपने दिव्य धनुष बाण तथा अन्य हथियारों से उसे मारने लगे। सभी प्रकार के अस्त्र उन्होंने छोड़े, लेकिन वृत्रासुर उनके सभी हथियार निगलता गया, उन सभी के हथियार निकल गया। उस असुर की शक्ति देखकर सभी देवता अत्यंत आश्चर्यचकित तथा निराश हो गए। देखिए व्यक्ति कब निराश होता है, जिस पे उसका सबसे ज्यादा भरोसा होता है, जब वही चकनाचूर हो जाता है या वो चीज खत्म हो जाती है, छिन जाती है, तो व्यक्ति को सबसे ज्यादा निराशा होती है। जब उनके हथियार जिन पे उतना विश्वास था उन्हें, तो वो जब छिन गए, वो जब निगल ही गया, तो सभी देवता लोग निराश हो गए। और उनकी निराशा इतनी बढ़ गई कि धीरे धीरे, ऐसा लिखा है इधर, उनकी सारी शक्ति जाती रही। अतः वे सभी, अभी देखिए जब व्यक्ति जब पूरी तरह से कोई होप नहीं रहती, होपलेस हो जाती, जब आशा खत्म हो जाती है व्यक्ति की, तो भक्त लोग कहाँ पे शरण लेते हैं? भगवान पे। अतः वे सभी परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करने के लिए निमित्त एकत्र हुए। तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी जानने वाली बात है कि जब भी देवता लोग, उन्हें भक्त कहा जाता है सुर, जब भी वो किसी दुविधा में होते हैं, दुख में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, तो भगवान को, भगवान के पास जाते हैं सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे हम बार बार देखते हैं कि देवता लोग अकेले नहीं जाते, हमेशा एकत्र होके जाते हैं, टुगेदर जाते हैं। तो इसी प्रकार से कलयुग में भी जो धर्म कहा गया, युग धर्म कहा गया, हरि नाम संकीर्तन कहा गया, मिलके। तो एक बात बड़ी जानने की इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, तो जब भी भक्त लोग मिलके एक साथ आते हैं, भगवान को पुकारते हैं, यत्र गायन्ति मत भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जिधर भी मेरे भक्त एक साथ मिलके मेरा मेरा अनुवाहन करते हैं, वहां पे मैं पाया जाता हूँ, वहां पे मैं मिलता हूँ। तो यहाँ पे ये बड़ा अच्छा जानने की बात है कि एक साथ मिलके वो भगवान को एकत्र होके, मिलके एकत्र होके भगवान को पुकारने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। तो अगले 3-4 श्लोकों में वो भगवान की यही स्तुति करते हैं। तो यहाँ पे पहले श्लोक में वो ये कहते हैं कि हम बड़े भयभीत हैं इस काल से कि जो हमारे अस्तित्व का अंत कर देगा। तो इनकी इनकी प्रार्थनाओं से लग रहा है पता कि वो कितने भयभीत हैं वृत्रासुर से, कितना भय उत्पन्न हो चुका है उनके हृदय में। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हम समय जो काल है उससे बहुत डरते हैं, क्योंकि वो कभी भी हमारा अंत कर सकता है कभी भी। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपना काम सही तरीके से करते हैं। इसी तरह कपिल देव भी अपने 25वें अध्याय में कहते हैं कि जो सूर्य है, जो हर एक देवी देवता हैं, जो अपना कार्य करते हैं वो मेरे भय से करते हैं। तो मेरे भय से मतलब काल के भय से करते हैं। श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की जय, गौरंग महाप्रभु की जय। तो इस प्रकार से वो भगवान का अनुवाहन कर रहे हैं, बार बार भगवान को अपनी दुविधा बता रहे हैं कि हे भगवान, हम बहुत डरे हुए हैं इस वृत्रासुर से। और उदाहरण भी दे रहे हैं कि किस प्रकार से आपने पहले भी हमें इन दुखों से, प्रॉब्लम से बचाया है। वो सत्यव्रत मुनि का एग्जाम्पल देते हैं कि किस प्रकार से सत्यव्रत मुनि को जैसे मत्स्य अवतार ने बचाया, और जब ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, करने जा रहे थे, उससे उस समय जब वो जो गर्भोदका सागर है उसमें गिर जाते हैं, तो किस प्रकार से आप उन्हें बचाते हैं। उतने ही प्रकार का ये बहुत बड़ा भय जो है हमें वृत्रासुर के नाम का आया है, क्योंकि देखिए जो गर्भोदक ओशन में जब तीसरे स्कंद में या द्वितीय स्कंद में इसका वर्णन आता है कि किस प्रकार से वो बहुत भयानक हवाएं चलती हैं और ये बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, लहरें आती हैं और बहुत भयानक हैं, इस तरह से जो डर पैदा करने वाली, जो ब्रह्मा जी के हृदय में डर पैदा किया था उससे आपने उन्हें मुक्त किया। इवन सत्यव्रत मुनि के टाइम जब डिसोल्यूशन हुआ जब, तो उस समय भी आपने किस प्रकार से मदद की। तो उसी प्रकार से ये जो बहुत बड़ा वृत्रासुर नाम का ये भयानक सागर है जो इसकी लहरें हैं, इससे हमें बचाइए। तो इस प्रकार से जब वो भगवान को आवाहन करते हैं तो भगवान शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान उसी टाइम प्रकट हो जाते हैं और शंख चक्र गदा पद्म के साथ और उनके पार्षदों के साथ, 16 पार्षद इधर लिखा गया है उनकी सेवा में लगे हुए हैं, तो उनके साथ वो आते हैं और भगवान के यहाँ पे गुणगान किया गया है कि भगवान किस प्रकार से कितने सुंदर हैं उनके नेत्र और अलग अलग प्रकार से उनके अलग अलग आभूषण, उनके श्रीवत्स, इन सब का भगवान की स्तुति, भगवान की सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है। और जैसे ही भगवान को देखते हैं देवता लोग, सबसे पहला कार्य क्या करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। नमस्ते यज्ञ वीर्याय व्यसे उतते नमः, नमस्ते हस्त चक्राय नमः सुपूर्य हुतये। तो इस प्रकार से वो भगवान का वो गुणगान करना शुरू कर देते हैं और स्टेप बाय स्टेप वो भगवान की के ज्ञान के बारे में, भगवान के पर्सनल अवतारों के बारे में, भगवान क्यों आते हैं, इस तरह से स्तुति करते जा रहे हैं। सो एक दो स्तुति में इधर बताता हूँ, इधर पढ़ता हूँ यहाँ से कि भगवान वो कहते हैं, हे भगवान, हे नारायण, हे वासुदेव, हे आदि पुरुष, परम अनुभव साक्षात मंगल, हे परम वरदान, हे परम वरदान, हे परम वरदान स्वरूप अत्यंत कृपालु, कृपालु जो हमेशा कृपा करते हैं, अतः तथा अपरिवर्तनीय जिनमें परिवर्तन नहीं आता। ऐसा नहीं कि अभी आप कृपा करेंगे, इतने समय पहले आपने उन पे कृपा की, हम पे कृपा नहीं करेंगे। आपके जो नेचर है उसमें कभी बदलाव नहीं आता, आप हमेशा से भक्तों के प्रति दया दिखाते रहते हैं। तो इस प्रकार से वह कहते हैं कि आपको समझना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे व्यक्ति आपको जानने का प्रयास करते हैं, अपना मनोरथ से आपको समझने का प्रयास करते हैं, बहुत सारे झूठे तर्क करते हैं और अपने अपने जो मिथ्या तर्कों और विषयों से वो आपको समझ नहीं पाते। इवन अगर वो भक्ति शास्त्र को भी पकड़ें, उसको अपने हिसाब से पढ़ने का प्रयास करें, तो भी वो कंक्लूजन पे नहीं आते। क्यों? क्योंकि आप एक सामान्य जीव की बुद्धि से परे हैं। तो जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक कोई व्यक्ति आपको समझ नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से देवता लोग कहते हैं कि आपको समझ पाना, हे भगवान, बहुत ही कठिन है। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं और आप बार बार अवतीर्ण होते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा जानने का बात है कि यहाँ पे वो बार बार कह रहे हैं कि आप नरसिंह, वामन, अलग अलग अवतार लिए हैं और तो ये अलग अलग अवतार लेते रहते हैं। तो यहाँ पे जानने की बात यह है कि अगर विचार किया जा सकता है कि भगवान अवतार लेते क्यों हैं, तो हम सभी ने तो भगवद गीता पढ़ी है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय विनाशाय च दुष्कृताम, है ना, दो कारण, धर्म संस्थापनार्थाय, ओके, तीसरा कारण सो विनाश करने के लिए, है ना, परित्राणाय साधूनां, साधु लोगों को, भक्त लोगों को आनंद देने के लिए, उनको होप देने के लिए, उनको, वो हमेशा भगवान भगवान के वियोग में रहते हैं कि कब भगवान के दर्शन होंगे, मैं कितने समय से इधर फंस चुका हूँ, है ना, ब्रह्मांडे भ्रमिते अनादिकाल से कोनो भाग्यवान जीव। भगवान गुरु कृपा मिलती है तो उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि मैंने क्या क्या किया। जितना भक्त धीरे धीरे उसकी भक्ति में वृद्धि होती जाती है तो ये प्राय उसमें क्या है, नम्रता आती जाती है, वो पछताता है कि उसके कार्यों पे उसने जो पहले किया है। तो इस प्रकार से भक्त हमेशा भगवान से वियोग में रहते हैं कि कब मैं वापस जाऊंगा, कब भगवान के दर्शन होंगे। और भगवान की लीलाएं भगवान करते हैं जिसके कारण क्या है कि वो सुन के क्या व्यक्ति भक्त का हृदय बड़ा तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। जैसे भागवतम वगैरह भी हम सुन रहे हैं कि कितनी अच्छी अच्छी लीलाएं हैं भगवान का, जब हम लीला पढ़ते हैं सुनते हैं तो कितना आनंद, एक सेटिस्फेक्शन पीस मिलता है जीवन में, है जो कि इस अनित्यम असुखम लोक में व्यक्ति को एक ओनली होप है ना। एक श्लोक है भागवतम में जिसमें भगवान की कथा के बारे में कहा गया है कि तज्जोष न शोक मनोभिरामात निवृत्त तर्षे उपगीयमाना भवोषदा शोत मनोभिरामात। सो भव शोक से जैसे व्यक्ति सुनता है, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसका शोक समाप्त हो जाता है। सो भगवान क्यों अवतीर्ण होते हैं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, राइट। तो अगर परित्राण आए साधना विनाश आए चाहे दुष्कृता, बहुत बार कहा गया विनाश करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं भगवान के लिए, लेकिन अपनी प्रकृति शक्ति या किसी को शक्तिपात कर सकते हैं, किसी को शक्ति दे सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन एक जो तीसरा कारण है धर्म संस्थापनार्थ है, इस पर भी बहुत ध्यान से अगर हम इस पर विचार करें क्यों धर्म संस्थापनार्थ है, भगवान को स्वयं आ रहे हैं वो भी तो दे सकते हैं, लेकिन जब किसी का पर्सनल संबंध रहता है ना किसी के साथ, एक पर्सनल रिलेशन रहता है, अगर कभी किसी के साथ आपका रहा हो तो व्यक्ति किसी दूसरे को नहीं भेजता, वो स्वयं खुद आता है। अगर आपका संबंध है, जिस व्यक्ति का जितना गहरा संबंध होता है वो उतना पर्सनल, वो उसको कंसर्न रहता है कि नहीं नहीं मुझे पर्सनली खुद आके देना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का जब अगर इस सृष्टि का निर्माण जब दूसरे स्कंद से, अगर जहाँ से भागवत शुरू होता है वहां से अगर हम देखेंगे कि दो कारण जो बताए गए सृष्टि का निर्माण के लिए, वो ये कहे गए हैं कि पहला कारण ये है कि जीवात्मा की इच्छा पूर्ण करना और दूसरा उसको वापस लेके जाना। एक्चुअली अगर देखा जाए इस पूरी सृष्टि में एक ही चीज आपको मिलेगी, भगवान का कंपैशन, भगवान का प्रेम। हर एक सृष्टि हर एक चीज में अगर हम देखेंगे, ध्यान से देखें तो यही मिलेगा। तो यहाँ पे धर्म संस्थापनार्थ है, किसी और से भी करा सकते हैं। तो क्योंकि परमात्मा के रूप में अगर आप देखेंगे वो सदैव फॉलो भी कर रहे हैं साथ में, कि जीवात्मा कभी भी सोचे कि कभी भी उसके पास ऐसा चांस नहीं रहेगा कि हे भगवान मेरे पास मौका नहीं था, कभी जीवात्मा का ऐसा ना हो कि हे भगवान मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं था, मैं चाहता था आपको प्राप्त करना लेकिन मिला नहीं है, ताकि जीवात्मा का सदैव अपॉर्चुनिटी रहे कि जब भी वो अपना फेस घुमाए भगवान की ओर, मैं सामने हूँ आपके अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो इसीलिए भगवान परमात्मा के स्वरूप में भी सदैव हृदय में, इसीलिए उन्हें कहा जाता है सुहृद भी कहा जाता है, जो बेस्ट वेल विशिंग फ्रेंड भी कहा जाता है। उनसे बड़ा मित्र कोई हुआ नहीं है और हुआ भी नहीं। और किस प्रकार से उन्हें चेते गुरु भी कहा जाता है, और जो गुरु है उसे परमात्मा ही कहा जाता है बाह्य रूप से, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप। तो दोनों मिलके आते हैं, दोनों जीवात्मा को ले ले जाने के लिए आते हैं। इसीलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं एक माली हूँ, कितना मैं फ्रूट्स बांटूंगा। तो भगवान की इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीवात्मा वापस आए। इसीलिए भगवद्गीता के जब एंडिंग के श्लोक आएंगे वहाँ पर कहा जाएगा, जो भी ये ज्ञान मेरे भक्तों में बांटता है वो मुझे बहुत बहुत प्रिय हो जाता है, बहुत बहुत प्रिय हो जाता है। तो क्यों प्रिय हो जाता है भगवान के लिए, क्योंकि वो कुछ तो ऐसा कर रहा है जो भगवान को बहुत प्रिय है, तभी वो भगवान के लिए प्रिय हो जाता है। तो भगवान का ये ज्ञान जो भगवान को देता है, इसी प्रकार से जब ये ज्ञान जब वो भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान ये कहते हैं देवताओं को, हे प्रिय देवताओं, प्रिय देवताओं, मैं आपकी जो स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान क्यों प्रसन्न है, भगवान को ऐसा थोड़ी ना कि आप मसाला लगा सकते हैं या थोड़ा मस्का लगा दिया थोड़ा, है ना ऐसा। भगवान सही में, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के यहाँ पे शब्द कहे हैं कि भगवान, इसमें अंत जो श्लोक है देवता ये कहते हैं कि ब्रह्मांड में बहुत समय से भ्रमण कर रहा है जीव, तो बहुत समय से भ्रमण करता करता जीव अंत में जब आपके चरणों को प्राप्त करता है तो उसकी उत्तम गति होती है। तो ये सब जब बातें जब भगवान सुनते हैं तो भगवान को बहुत आनंद प्राप्त होता है, इसलिए भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि आपको घबराइए मत, सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ, जाइए आप दधीची जी के पास जाइए, वो आपको अपनी अस्थियाँ देंगे, क्योंकि वो उन्होंने नारायण कवच बहुत समय से प्रैक्टिस किया है, अभ्यास किया है, और उनका शरीर बहुत स्ट्रांग हो चुका है, और जो उस ऋषि की तपोबल से जो हड्डियों से जो विश्वकर्मा वज्र बनाएगा, और मेरा तेज भी उसमें सम्मिलित होगा, मेरा तेज भी उसमें रहेगा, और उस तेज से जब तुम उस वृत्रासुर पे आप अटैक करोगे तो वो वृत्रासुर का उससे नाश हो जाएगा। सो भगवान इस प्रकार से कह रहे, देवता लोग अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, तो उस तरह से फिर वो देवता लोग चले जाते हैं, और साथ में भगवान अंत में ये बोलते हैं कि वो मेरा मेरा भक्त भी है वो, लास्ट में जस्ट एक स्टेटमेंट बोलते हैं, मेरा भक्त भी है वो, तो वो आपका कुछ आपका नाश नहीं करेगा। तो छोटी सी बात बोली, वो बाद में रिवील होगी कि एक्चुअली देवता, अभी लग रहा नहीं कि इंद्र जी और बाकी देवता लोगों ने उसको इतना सीरियसली समझा है कि वो किस प्रकार का भगवान का भक्त है। तो दधीची जी के पास वो कहते हैं कि दधीची जी के पास जाइए, और कौन उन्हें अप्रोच करें, उन्हें अप्रोच करें अश्विनी कुमार, क्योंकि इस तरह की एक स्टोरी है, कथा है कि एक समय था कि अश्विनी कुमार जी दो लोग हैं, उन्हें ब्रह्म ज्ञान, अभी हमने पीछे भागवत के प्रपट में हमने देखा कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, तो ब्रह्म ज्ञान वो भी चाहते थे, आत्मज्ञान चाहते थे, लेकिन वो क्या थे, वैद्य थे, तो इवन देवताओं की असेंबली में भी, उन ग्रुप में भी इंद्र जी उन्हें, देवराज इंद्र उन्हें थोड़ा निम्न मानते थे कि नहीं 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 उन्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्रह्म ज्ञान पे तो हर एक व्यक्ति का अधिकार है ना। तो अश्विनी कुमार जी का जब उन्हें पता लगता है इंद्र जी को कि दधीची मुनि उन्हें ब्रह्म ज्ञान देने के लिए रेडी हो गए, तो अपने इंद्र जी देवराज इंद्र कहते हैं दधीची जी को कि अगर आपने ब्रह्म ज्ञान इन्हें दे दिया तो मैं आपका सर उड़ा दूंगा। तो ये जब बात उन्हें अश्विनी कुमार को लगती है पता, तो वो कहते हैं कि आप घबराइए मत, कोई बात नहीं, हम आपका अश्व का सर लगा देते हैं, और जब इंद्र आपका सर काट देंगे तो हम वापस आपको दधीची जो मनुष्य का शरीर है वापस लगा देंगे। तो बात ठीक है, इसलिए वो जो उन्होंने ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान उन्हें दिया, उसे कहा जाता है, कभी कभी उसे अश्व गीता भी कहा जाता है, हयग्रीव गीता, इस तरह से कुछ एक शब्द है उसका। सो अगर हम देखेंगे ये जो वार्तालाप, ये पूरा जो वृत्रासुर की जो कथा भी शुरू हुई है, ये सिंपल एक युद्ध नहीं है जो भागवतम में जो अगर जो डाला गया है, जो डिस्कशन में लाया गया है, इसमें जो विवेचना हुई है, जो वार्तालाप हुआ है वृत्रासुर का, ने जो प्रवचन किया है देवताओं के साथ इस युद्ध भूमि में, जिस प्रकार से भगवद्गीता का ज्ञान कृष्ण ने युद्ध भूमि में दिया है अर्जुन को, इसी प्रकार से जो भी ये ज्ञान जो दिया गया इतना इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्व रखता है, इसीलिए इसका इतना ग्लोरीज है, इतना जयकारा है कि इवन इस तरह से भी कहा जाता है कि जो शास्त्र जिसमें वृत्रासुर का युद्ध और युद्ध के बारे में वर्णन दिया गया है उसको श्रीमद् भागवतम कहते हैं। तो अभी जो आगे आने वाले वार्तालाप है उसकी इतना महत्व है, और कभी कभी ये जो चार श्लोक जो स्पेसिफिकली बोले गए वृत्रासुर ने, तो उन्हें भी कभी कभी चतुर्श्लोकी भागवत कहा जाता है। सो इस प्रकार से बहुत अच्छा डिटेल में बताया गया किस प्रकार से इन दोनों का डिस्कशन होता है, दधीची मुनि का और देवताओं का। सो दधीची मुनि के सामने इंद्र तो जा नहीं सकते थे अभी, क्योंकि पहले ब्रह्म ज्ञान के टाइम उन्होंने उनका जो भी इंसिडेंस हुआ था, तो उन्हें किसे आगे फॉरवर्ड करते हैं, अश्विनी कुमार को, तो क्योंकि शिष्य स्नेह, तो दोनों के बीच में, क्योंकि दधीची मुनि सब धर्म का ज्ञान भी सुनना चाहते थे। तो देखिए एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि हर एक व्यक्ति धर्म का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जानने का बहुत इच्छुक है, डिस्कशन भले ही पता है लेकिन फिर भी डिस्कशन करना चाहता है। तो वहां पे वो देवता लोगों को कहते हैं कि हमें आपका शरीर चाहिए, सीधा सीधा बोल देते हैं। तो दधीची बोल देते हैं कि अरे ऐसे कैसे देह तो सबको प्रिय है इस संसार में, इवन अगर लॉर्ड विष्णु जिन्होंने, भगवान विष्णु जिन्होंने ये देह दिया सबको, अगर वो भी अगर आ जाए मांगने के लिए तो नहीं देंगे हम, है ना, इतना प्रिय है। तो इस प्रकार से वे देवता लोग बोलते हैं कि एक एक व्यंग मारते हैं, एक उदाहरण दे देते हैं इसे आनंद से, कि देखिए जो भीख मांगता है, अगर भिखारी को पता है कि जो देने वाले की दुविधा, उसकी प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है, भिखारी तो चाहता है कि अरे सारा संपत्ति मेरे को दे दे, सब कुछ है जो भी जेब में सब मेरे को ही दे दे। अगर भिखारी को पता है कि वो कि उसकी दुविधा उसकी प्रॉब्लम को समझे तो भीख नहीं मांगेगा, कभी मांगेगा क्या? कभी नहीं मांगेगा। उसी प्रकार से जो देने वाला है, अगर उसको उसकी स्थिति पता है, जो जो भीख मांग रहा है, जो मांग रहा है कुछ भिक्षुक, अगर उसकी प्रॉब्लम उसको पता है तो वो कभी उसे मना करेगा ही नहीं, है ना। अगर उसकी प्रॉब्लम अगर देने वाले को पता है कि यार बेचारा कितना तड़प रहा है, उसको खाने को नहीं है, तो कभी मना नहीं करेगा। तो वही ये जो व्यंग मारते हैं, जो उदाहरण देते हैं, वो इस ये सोच के ये बोल के देते हैं कि अगर हमें तो चलो पता ही नहीं है आपकी प्रॉब्लम का कि देह से कितना, क्योंकि हम तो अपने ही आनंद में डूबे हुए हैं, हमें अपना स्वर्ग का सुख चाहिए, इसीलिए हम आपके दुख को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। हम भिखारी हैं, मांग रहे हैं, हम तो आपके दुख को समझ नहीं सकते। लेकिन आप भी ऐसे, आपने इतने सालों साल तप किया है, इतना भजन किया है, आपको तो हमारा दुख समझना चाहिए। लेकिन अगर आप भी समझ नहीं पा रहे तो मतलब आपके भक्ति भजन वगैरह का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं आपसे, आप तो हमारे जैसे ही हैं। तो एक हिसाब से तो इस प्रकार से जब दधीचि मुनि ये इस बात को सुनते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जस्ट ज्ञान धर्म ज्ञान सुनना चाहता था। तो कहते हैं कि इस संसार में एक्चुअली किसी भी चीज की क्या वैल्यू है, किसी भी धन का आदमी कितना भी अक्यूमुलेट कर ले, कितना भी प्राप्त कर ले, अल्टीमेटली वो निरर्थक है, वो साथ में लेके तो जाता नहीं है। अगर इस देह को भी आदमी कितना प्रोटेक्ट कर ले, कुछ समय बाद तो उसे देना ही पड़ता है, और जो भी संसार में वो अर्जित करता है कुछ समय बाद उसको छोड़ना ही पड़ता है। तो इसीलिए इस संसार में एक्चुअल में अगर कुछ वो कर सकता है, कोई वैल्यूएबल चीज है, तो किसी पे परोपकार करना, ये देह किसी के काम आ जाए बस, उससे हो जाता और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए। तो इसीलिए दधीचि मुनि कहते हैं कि ये देह जो कि किसी कुत्ते वगैरह के काम आएगा, वो भी एक बेटर है। तो कहते हैं कि उस मनुष्य जो उस कृपण मनुष्य से बेटर है, जो कि किसी का कुछ भला नहीं कर सकता, उससे बेटर है वो वृक्ष जो कि एटलीस्ट अपने जीवन के उपरांत भी देते रहते हैं और मरने के उपरांत भी लकड़ी किसी के काम आ जाती है। जब वो जिंदे होते हैं, जैसे आम का पेड़, यहाँ बहुत सारे आम लगे, तो आम है ना, अभी जो आम वगैरह बेच बेच के इतना पैसा कमा रहा है, तो कभी पेड़ ने कहा है कि मेरा भी इसमें कुछ पार्ट है ना। पेड़ लगाते हैं और निकाल के बेचते हैं। तो इस प्रकार से वृक्ष ने कभी कभी जीवित जब रहता है पेड़, तब भी कुछ ना कुछ देता रहता है, छाया देता है, और मरने के उपरांत भी देता रहता है। तो अगर हम इसी बात को देखें तो चैतन्य महाप्रभु ने भी तीसरा जो श्लोक है, तृणादपि सुनिचि न तरुरपि सहिष्णुः, वृक्ष से उपमा दी गई है। इवन कृष्णा भी दशम स्कंद में एक दो बार वृक्ष को ग्लोरीफाई करते हैं, राइट। तो इस प्रकार से दधीचि मुनि कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा वैल्यू वही है कि दूसरों के लिए परोपकार किया जाए। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा परोपकार क्या होगा, जब भक्तों की सेवा में मेरा देह चला जाएगा। तो ये सोच के वो समाधि ले लेते हैं और उनका देह नष्ट हो जाता है और उनकी जो अस्थियां होती हैं उससे विश्वकर्मा क्या बनाते हैं, वज्र बनाते हैं। और ऐसा कहा जाता है उसमें 100 एज होते हैं, ऐसा मेंशन है। एनीवेज, सो अब सीन शुरू हुआ है, जस्ट एंड करूंगा, मैं फिनिश करूंगा। अभी अभी देवताओं को पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है, अभी जो हमारे पास हथियार है, क्योंकि वो जो पहले के जो हथियार थे, अस्त्र शस्त्र, वो तो सब निकल चुके थे वृत्रासुर, उनके पास कुछ बचा नहीं था। अब नए हथियार उन्होंने बनाए थे, और एक नया हथियार उनके पास था वज्र, जिसमें दधीचि जी की तपस्या थी और नारायण जी का, भगवान विष्णु का तेज था, और विश्वकर्मा जी ने बनाया था। और जब वो दधीचि जी के ये वज्र उनके पास आ गया, इंद्र के पास, तो एक नया जोश, एक तेज था, एक कॉन्फिडेंस आ गया। मानना पड़ेगा उनके कॉन्फिडेंस को कि कुछ समय पहले ही जस्ट जब एकदम से निरुत्साहित हो चुके थे एक्चुअली, वो कुछ समय पहले, एक सही में मानना पड़ेगा क्षत्रिय का, कि इतना कॉन्फिडेंस आ गया। कि इस तरह से उनके कॉन्फिडेंस का वर्णन कैसे, इस तरह से वर्णन है कि इतनी स्पीड से वो जा रहे थे लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए, जिस प्रकार से महादेव यमराज को मारने के लिए पीछे दौड़े थे। तो एक बार कोई तो कथा है उसमें इस तरह से आता है कि यमराज को मारने के लिए भगवान शिव पीछे पड़ते हैं, मार्कंडेय ऋषि का एक कथा है उसमें आता है। तो इतने तेज से उनके उपमा दी गई है, अनुमान लगाया गया है, उदाहरण दिया गया है कि इतने जोश से, इतने इतना गुस्सा था और इतना उस बीच में इतना परेशान कर दिया था इन सभी राक्षसों ने, दैत्यों ने, कि वो सभी देवता लोग इतने गुस्से में थे। अभी आगे वर्णन लगेगा पता कि कितना गुस्सा था उन्हें। और एक ओर से पूरा दैत्य लोगों की पूरी टीम थी, अलग अलग प्रकार के असुर यक्ष पूरी टीम है, पूरी काउंट नहीं किया जा सकता कि कितने लोग थे वो। तो इसमें पूरे अभी पूरा वर्णन आता है कि किस कौन कौन से, शंबरा, निमुची, शंबरा वही जो बाद में प्रद्युम्न मारते हैं जिन्हें, और एक 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 दैत्यों का वर्णन करते हैं तो लगेगा पता कि निमुची, शंबरा, अनवर्मा, द्विमूर्धा, ऋषभ, असुर, हयग्रीव, शंकु, शिरा, विप्रचित्ति, अयोमुखा, पुलोमा, वृषपर्वा, परहेती, इस प्रकार से बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के नाम है। और एक्चुअली इसमें हर एक जो असुर का नाम है, सब कमांडर हैं अपने अपने। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, निमुची, अभी वो ऐसा करेक्टर थे, इतने पावरफुल ऐसा करेक्टर थे। अभी जो नाम है निमुची, मतलब एक बार जो उनके एरिया में आ गया, मुची छूटना, नमुची मतलब कोई उनसे बच नहीं सकता था, एक बार जो एरिया में आ गया उनके, मतलब इतने शक्तिशाली। तो मतलब इस प्रकार से एक एक व्यक्ति ऐसा सा कमांडर था, और बीच में खुद स्वयं वृत्रासुर तो थे ही, और पूरी आर्मी, देवताओं की पूरी आर्मी अटैक करती है, और वो भी कोटि कोटि, एक एक कैटेगरी ऑफ देवता उनमें, जैसे 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 चौथा स्कंद था ना हमारा चल रहा, उसमें भृगु पैदा करते हैं ना, रिभु, उसको रिभु आता है, तो वो भी असंख्य इस तरह से अलग अलग प्रकार के मारुत, रिभु, अलग अलग कैटेगरी, इवन 11 रुद्रास जो साक्षात शिव ही, जो कि प्रलय का अंत करने आते हैं, जब प्रलय के टाइम जब विश्व का अंत करने के लिए आते हैं, तो मतलब पूरी देवताओं की शक्ति और इधर से पूरी दानवों की शक्ति। ऐसा बहुत कम होता है कि जब बड़े बड़े जिस प्रकार से महाभारत कहा जाता है, ऐसे ऐसे युद्ध बड़े कम होते हैं। तो उस प्रकार से जो वृत्रासुर, इस देवासुर संग्राम है, वृत्रासुर और इंद्र का, ये बड़ा फेमस है, बहुत कम है, और ये वन ऑफ द फेमस में से माना जाता है। तो इस प्रकार से जब जिस प्रकार से अभी देवता लोग जब इस तरह से आते हैं सामने और असुर सामने है, तो अभी असुर लोग भी पूरे जोश में है, तो वो क्या करते हैं, त्रिशूलों, फरसों, तलवारों, शतग्नि, अलग अलग प्रकार के अस्त्रों का एक साथ होकर, अभी वो सोचते हैं कि अभी देखो क्या है, बार बार क्या अकेले अकेले लड़ने का, एक मारेगा, दो मारेगा, तीन मारेगा, एक पार्टी लड़ेगी, एक लड़ेगी, एक साथ ही सारे अपने अस्त्र छोड़ देते हैं, देवताओं को खत्म कर देते हैं एक शॉट में, क्या जल्दी से मैच खत्म है ना। तो अपनी बर्छा होता है वो भाला जैसा रहता है ना, वैसे उसे बोलते हैं बर्छा, त्रिशूल, फरसों, तलवारें, शतग्नि और भिशुंडी जैसे अन्य हथियारों से सुसज्जित होकर असुरों ने विभिन्न दिशाओं से आक्रमण कर दिया और देवताओं की सेना के समस्त नायकों को तितर बितर कर दिया। अभी वर्णन के कितने किस तरह से अटैक किया था, जिस प्रकार से घने बादलों से आकाश में छा जाने से तारे दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार से जिस प्रकार से जब बादल रात के टाइम या दिन के टाइम सूर्य को कवर कर देते हैं, उसी प्रकार से जो देवता लोग नजर नहीं आ रहे थे, इतना घना अंधकार छा गया उनके बाणों से। जब असुरों के हथियार तथा मंत्र लेकिन उसी प्रकार से जिस प्रकार से आकाश में छा जाने का तारे दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार एक एक के बाद एक गिरने वाले बाणों के जाल से पूर्णतः आच्छादित हो जाने से देवतागण दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन देवताओं की सेना को मारने के लिए हथियार तथा बाणों के द्वारा की गई वर्षा उन तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उन्होंने अपने हस्त लाघव से आकाश से उन हथियारों को काटकर खंड खंड कर दिया। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन सभी हथियारों को काट दिया। अभी इतना काट दिया तो अभी उनके मेन वेपन थे, अभी देखो सारा कॉन्फिडेंस तो इधर ही लूज हो गया, जैसे पहले देवताओं ने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था जब वृत्रासुर खा गया था, अभी इधर इन्होंने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। तो अभी उन्होंने क्या सोचा, अभी हथियार तो है नहीं, अभी क्या किया जाए, लास्ट होप हो के जिधर भी पीक्स मिल रही थी, माउंटेन मिल रहे थे, बड़े बड़े पहाड़ मिल रहे थे, उठा के फेंकना शुरू कर दिया। अभी वो भी उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया अपने हथियारों से। और जब ऐसी स्थिति हुई, जब उन्हें लगा कि कोई होप ही नहीं है, तो क्या करने लग पड़े, वो भागने लग पड़े। तो जब सभी भागने लगे डर के मारे, क्योंकि अभी कोई होप ही नहीं है, अटैक वो कर नहीं सकते, तो क्या करने, मार ही खानी पड़ेगी, है ना। मार को सह गए तो अलग बात है, लेकिन मार अभी मरने का फुल टू चांस, उन्हें भय आ गया अंदर से, हृदय में भय आ गया। तो अपनी सेना को क्षत विक्षत तथा समस्त असुरों को, यहां तक कि जो परमवीर कहलाते थे, बड़े बड़े कहलाते थे, शक्तिशाली, अत्यंत भय के कारण युद्ध भूमि से भागते हुए देखकर सचमुच से विशाल हृदय वाला बहादुर वृत्रासुर हंसा और इन शब्दों में बोला। तो बड़े ये चीज है जो अभी जो बोलने जा रहे हैं वृत्रासुर, इस कारण से श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन किया गया है कि क्या कहते हैं ना। तो मैं संक्षेप में कहता हूँ, दो बातें कहते हैं कि दो ही चीजें, इस दो प्रकार की मृत्यु बहुत गौरवशाली है, बहुत फेमस है। देखिए, ये जीवन जो है, मनुष्य जीवन, इसे इस तरह भी कहा जाता है कि आर्ट ऑफ डाइंग, कि आदमी को सीखना चाहिए किस तरह से मरना है, क्योंकि पैदा तो व्यक्ति अपने कंट्रोल में नहीं है किस तरह से होता है। इसीलिए कभी कभी वैष्णवों के तिरोभाव दिवस को बहुत महत्व दिया गया है, आर्ट ऑफ डाइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बताते हैं कि किस प्रकार से दो प्रकार की मृत्यु जो है वृत्रासुर बताते हैं, बहुत सराहनीय है, बहुत बहुत फेमस है। पहली, यह तो योग सिद्धि में भगवान का ध्यान किया जाए, स्मरण किया जाए, यम यम वापी स्मरण भाव आते जन्ते अंते कलेवरम, तम तम एवेति कुंते सदा तद भाव भवति, अंत काले चमाम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, है ना। और दूसरी मृत्यु, जो युद्ध में अपनी पीठ ना दिखाए। तो इस प्रकार से कहा गया कि जो क्षत्रिय होता है, जो अपने युद्ध भूमि में मारा जाता है, मरता है, उसको भी बहुत उच्च गति प्राप्त होती है। और दो लोगों को, एक क्षत्रिय जो युद्ध भूमि में मरना चाहिए, और ब्राह्मण जंगल में मरना चाहिए, कभी घर में नहीं। नहीं तो प्राय रहता है कि घर वालों से आसक्ति हो जाती है, उनका चेहरा देख के ममता आ जाती है, तो जो कि अधोगति मिलती जिसके कारण। तो इसीलिए जो ये जीवन है, आर्ट ऑफ डाइंग, व्यक्ति को कैसे मरना चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसका तो कोई, मुझे पता था कि मैं अंत नहीं कर पाऊंगा। तो इसी प्रकार से जो सर्व गुह्यतमं भूया शुणु में परमं वच इष्ठोसी में इति ततो वक्ष्यामि ते हितम। सो कृष्ण कहते हैं कि अब जो मैं ज्ञान देने वाला हूँ, वो सबसे सीक्रेट देने वाला हूँ, तो वो सीक्रेट ज्ञान कृष्ण कहते हैं, जो आगे वृत्रासुर कहेंगे, जो पूरा जिसका सारांश है, जो अगला शब्द श्लोक है, वो श्लोक इस मनमना भव मद भक्तो, आप सभी ने सुना होगा, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतेजाने प्रियोसि मे, मनमना भव मद भक्तो, मेरा मनन करते रहो, मेरे डिवोटी बन जाओ, मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मामे वेशी सत्यम ते, अवश्य सत्यम ते, सत्यम ते सत्य है, प्रते जाने प्रियोसी मामे वेशी सत्य, मन मना मद भक्तो मदयाजी, आप मेरे पास आ जाओगे, मामे वेशी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसीलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सत्य कह रहा हूँ कि अगर तुम मुझे स्मरण करने का प्रयास करोगे, मुझे जानने का प्रयास करोगे, मेरे भक्त बनोगे, मुझे प्रणाम करोगे, तो मैं तुम इसकी गारंटी देता हूँ कि तुम मेरे पास आओगे, क्योंकि मैं अपने प्रिय लोगों को झूठ नहीं बोलता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गीता का अंत करते हैं, उसके बाद सर्वधर्मान परित्यज्य बोलते हैं। तो यहाँ पर वृत्रासुर भी जब युद्ध भूमि में अंत इस प्रकार से भगवान पर मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, अगर हम इसका सेम लाइन में देखेंगे तो परीक्षित महाराज भी अंत में समाधि में चले जाते हैं, और तक्षक आता है, उन्हें काटता है, और लेकिन वो समाधि में रहते हैं। उसी प्रकार से वृत्रासुर भी अंतकाल में भगवान पे पूरा ध्यान किए होते हैं, और हालांकि इंद्र उनके सर को काट रहा होता है, लेकिन वो समाधि में होते, भगवान के मनन में होते हैं। और इधर हम प्रभुपाद का ही फोटो उधर देखेंगे, इधर बना है कि किस प्रकार से अंत काल में भी भगवान का वो ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का। तो ये है ग्लोरियस, ये है जीवन का लक्ष्य, आर्ट ऑफ डाइंग, टू लर्न हाउ टू डाई। सो बहुत सारी जो मैंने बातें कही हैं वो मैं प्रयास कर रहा हूँ सीखने का, अप्लाई करने का। अगर मैंने कुछ भी आगे पीछे कहा है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय।